नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक कपिल और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज कल से शुरू। कप्तान शुभमन गिल को मिली बड़ी जिम्मेदारी। फिडे विश्व रैपिड एंड ब्लिस टीम चैंपियनशिप के दूसरे चरण के ब्लिट्ज सेमीफाइनल में दिव्या देशमुख ने दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी हो युफान को हराया। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा कल पेरिस डायमंड लीग में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार। और हॉकी इंडिया मास्टर्स कप में महाराष्ट्र ने मणिपुर के खिलाफ 7-1 से जीत दर्ज की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज कल से शुरू होगी, जिसका पहला मैच लीड्स के हेडिंगली क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। इंग्लैंड दौरा भारतीय टीम के लिए एक नया अध्याय लिखेगा, जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा और आर अश्विन के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद शुभमन गिल कप्तान होंगे। मोना जी, एक बिल्कुल नई टीम, नई जिम्मेदारी और नई अध्याय लिखने जा रही है।
बिल्कुल, और आपको पता ही है कि जो जिनको हम सेना कंट्रीज बोलते हैं, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, इस यहाँ पर टेस्ट श्रृंखला जीतना बहुत ही कठिन चुनौती होती है। और ऐसे में एक 25 साल का कप्तान है जिसके पास एक ऐसी टीम है जिसके सबसे बड़े जो सुपर स्टार्स हैं, जैसे आपने बताया विराट कोहली, रोहित शर्मा और आर अश्विन, टीम में नहीं है। बदलाव के दौर से गुजर रही है भारतीय टीम और ये वाकई में शुभमन के कंधों पर बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होगी।
श्रोताओं, आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट।
भारत के टेस्ट क्रिकेट उपकप्तान ऋषभ पंत ने पुष्टि की है कि शुभमन गिल को पूर्व कप्तान विराट कोहली की जगह नंबर 4 पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी दी जाएगी।
शुभमन हैज अ रियली गुड कॉमरेडरी ऑफ द फील्ड, यू नो, इफ यू आर गुड फ्रेंड्स ऑफ द फील्ड, इट इवेंचुअली कम्स ऑन द फील्ड, इट्स मच मोर बेटर फॉर क्रिकेट ऑलवेज, एंड दैट इज समथिंग आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड। एंड मी एंड हिम वी जेल रियली वेल टुगेदर, वी कीप ऑन हैविंग कन्वर्सेशन एंड द काइंड ऑफ कंफर्ट जोन वी हैव विद ईच अदर, आई थिंक दैट इज रियली गोइंग टू बी स्पेशल फॉर अस।
कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया गया।
There was, I mean, after Virat bhai retired, me and GG bhai had a discussion about it, and we were both clear that he wanted me to bat at number 4, and I was also clear that I also wanted to bat at that number.
टीम में नंबर 3 के लिए जो विकल्प सामने हैं, उनमें वापसी कर रहे करुण नायर और डेब्यू का इंतजार कर रहे बीसाई सुदर्शन का नाम है, जिन्हें विशेषज्ञों ने काफी सराहा है। जायसवाल और राहुल एक बार फिर ओपनिंग जोड़ी बना सकते हैं। अगर नायर को नंबर 3 पर उतारा जाता है तो रविंद्र जडेजा को बतौर ऑलराउंडर लगभग तय माना जाए, तो पंत के बाद एक अतिरिक्त बल्लेबाज की जरूरत है और वो स्थान या तो सुदर्शन या फिर ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले नीतीश कुमार रेड्डी को मिल सकता है। रेड्डी और शार्दुल ठाकुर में से किसी एक को चुनना भी मुश्किल भरा फैसला होगा। शार्दुल ठाकुर को नंबर 8 पर बल्लेबाजी के लिए उतारा जा सकता है। शार्दुल बल्लेबाजी को गहराई भी दे सकते हैं और भारत को एक चौथा सीम बॉलिंग विकल्प भी उपलब्ध करा सकते हैं। जसप्रीत और मोहम्मद सिराज का तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करना लगभग तय है। पिच गर्म मौसम के चलते टर्न ले सकती है और ऐसी स्थिति में कुलदीप यादव की भूमिका अहम होगी। टीम प्रबंधन अगर बल्लेबाजी को प्राथमिकता देता है तो वॉशिंगटन सुंदर अंतिम 11 में दिखाई देंगे। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
मोना जी, एक तो बड़े दिग्गज खिलाड़ी नहीं है इस दौरे में, और ऊपर से जो नए खिलाड़ी हैं वो किसी ने पिछले जो सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसमें शानदार प्रदर्शन किया, अभी जो इंट्रा टीम मैचेस हुए उनमें शानदार, तो थोड़ा सा मैनेजमेंट के सामने ये भी चुनौती रहेगी कि किसे प्लेइंग 11 में मौका दिया जाए।
बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जो फैसला है ये हालात और पिच को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा कि भारत का टीम संयोजन क्या होता है, क्या इसमें एक अतिरिक्त स्पिनर को उतारा जाता है या तेज गेंदबाजी पर ही निर्भर आक्रमण होता है, और बल्लेबाजी क्रम, जैसे कि अभी चौथा नंबर है, शुभमन गिल क्लियर कर चुके हैं कि वो चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरेंगे, तो ऐसे में ओपनिंग पेयर जो होगी वो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल जायसवाल की हो सकती है, फिर तीसरे नंबर पर कौन उतरेगा, क्या वो करुण नायर पर भरोसा जताया जाएगा?
तीसरे नंबर को लेके अभी सस्पेंस है, जैसे चौथे नंबर पर शुभमन गिल, और शुभमन गिल का चौथे नंबर पर खेलना, हमने एक लेगेसी देखी है कि सचिन तेंदुलकर चौथे नंबर पर करते थे, उनका स्थान विराट कोहली ने लिया, उन्होंने उस लेगेसी को मेंटेन किया, और अब शुभमन गिल से ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बतौर कप्तान तो ठीक है लेकिन चौथे नंबर की जो लेगेसी है उसे भी, उसकी जिम्मेदारी भी निभा पाएंगे।
और अभी बहुत ज्यादा लाल गेंद के क्रिकेट का अनुभव भी उनके पास नहीं, 35 टेस्ट उन्होंने खेले हैं, लेकिन यहाँ एक अच्छी बात यह है कि हमारे जो नए खिलाड़ी भी हैं, चाहे टीम में आए हैं, जो वापसी करने वाले करुण नायर हो, चाहे बी साई सुदर्शन हो, चाहे इन्होंने इंग्लैंड में इंटरनेशनल क्रिकेट उतना नहीं खेला लेकिन नॉर्थम्पटन शहर और सरे के लिए काउंटी खेल चुके हैं, तो वो एक एडिशनल एडवांटेज है। और यहाँ पर अगर भारत के पास उसके सबसे सीनियर खिलाड़ी नहीं है तो हमें यह भी देखना होगा कि ये वो इंग्लैंड की टीम है जिसमें न तो जेम्स एंडरसन है और न ही स्टुअर्ट ब्रॉड है, तो वहां पर भी उनके तरकश में भी कुछ तीर कम नजर आ रहे हैं, तो भारतीय टीम जरूर इसको बुनाने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो निश्चित तौर पर एक जो रूट है, 13,000 से ज्यादा टेस्ट रन बना चुके हैं
और हम के रिकॉर्ड का पीछे
हमारे सबसे अनुभवी जो खिलाड़ी हैं, बल्लेबाज हैं इस टीम में, वो केएल राहुल है जो 3,000 कुछ रन, तो आपको एक वो जो अंतर है अनुभव का वो साफ नजर आता है।
अच्छा, लीड्स की जो पिच है इस बार, कुछ रिपोर्ट्स आ रही है उन पे नजर डालें तो देख रहे हैं पिच काफी ग्रीन है इस बार, तो लोगों का कयास लगा रहे हैं, जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि ये गेंदबाजी में मदद करेगी,
तेज गेंदबाजों की मददगार होने की संभावना लगती है। और यही पे मैं कहती हूँ कि भारत को जो एक एज है, जो हमारी टीम का ट्रम्प कार्ड हो सकता है और जो इस मैच का निर्णायक खिलाड़ी हो सकता है, वो है जसप्रीत बुमराह। वही जसप्रीत बुमराह जिन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, जहां पूरी भारतीय टीम नाकाम रही थी, जसप्रीत बुमराह ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था, तो इंग्लैंड की जो अपेक्षाकृत कमजोर बल्लेबाजी हमें निचले क्रम पे दिखती है, तो जसप्रीत बुमराह वहां पर भारत को बहुत बड़ी कामयाबी दिला सकते हैं।
फिडे विश्व रैपिड एंड ब्लिस टेस्ट टीम चैंपियनशिप के दूसरे चरण के ब्लिट्स सेमीफाइनल में दिव्या देशमुख ने जीत दर्ज की। दिव्या ने दुनिया नंबर की 1 खिलाड़ी होई इफान को शिकस्त दी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी सराहना की। पेश है विस्तृत रिपोर्ट।
हेक्सामाइंड शतरंज क्लब का प्रतिनिधित्व करते हुए 18 वर्षीय दिव्या ने 74 चालों के रोमांचक मुकाबले में यी फान को शिकस्त दी है। बिल्ड्स फॉर्मेट में दिव्या ने 8 में से 6 गेम जीतकर एक ड्रॉ और सिर्फ एक हार दर्ज की, जिससे उनकी एलीट परफॉर्मेंस रेटिंग 2606 रही। रैपिड फॉर्मेट में दिव्या को 5 जीत, 6 ड्रॉ और सिर्फ एक हार मिली। उन्होंने बोर्ड 6 पर 2420 की प्रदर्शन रेटिंग के साथ टीम रजत और एक व्यक्तिगत कांस्य पदक हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर दिव्या को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी सफलता उनके धैर्य और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। दिव्या ने जवाब में लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री का मुझे सम्मानित करना मेरे लिए बहुत सम्मान और प्रोत्साहन की बात है। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा कल सितारों से भरी पेरिस डायमंड लीग में भारत की चुनौती पेश करेंगे। नीरज 2 बार 90 मीटर की बाधा पार कर चुके हैं और उनकी नजरें सत्र के पहले बड़े खिताब पर होंगी। मोना जी, नीरज जी अब जा रहे हैं, नीरज चोपड़ा जी तो उनकी कैसा प्रदर्शन भारत अपेक्षा कर रहा है?
देखिए, बिल्कुल सत्र का पहला मेजर खिताब जीतना चाहेंगे। दोहा डायमंड लीग में आपको याद होगा आखिरी थ्रो तक नीरज चोपड़ा सबसे आगे चल रहे थे और जूलियन वेबर ने जो लास्ट थ्रो 91 मीटर से अबव मारा उसी की वजह से नीरज को दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। लेकिन अब जो 90 मीटर की बाधा की हम बार बार बात करते थे वो पार कर चुके हैं और खुलकर अपना सर्वश्रेष्ठ दर्शन कर सकते हैं। और दोहा डायमंड लीग के बाद भी उन्होंने कहा था कि अब मेरा थ्रो जो है वो लगातार बेहतर होता जाएगा। लेकिन यहां हमें यह नहीं भूलना है कि जो ये 8 भाला फेंक खिलाड़ी इसमें है उसमें से 5 ऐसे हैं जो 90 मीटर पार कर चुके हैं, जिसमें एंडरसन पीटर्स जो है ग्रेनाडा के, जूलियन वेबर वहां होंगे ही, नीरज चोपड़ा है, तो काफी कठिन मुकाबला रहने वाला है। लेकिन जो निरंतरता प्रदर्शन में नीरज ने दिखाई है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो जरूर यहाँ जूलियन वेबर से जो पिछली 2 हार है, एक पोलैंड में भी हारे थे उनसे, उन हारों का, उन पराजयों का बदला चुकता करेंगे।
अच्छा नीरज 8 साल बाद पेरिस चरण में भाग ले रहे हैं।
2017 में जब वो वर्ल्ड जूनियर चैंपियन बने थे तब वहां पर उन्होंने 89 मीटर का थ्रो मारा था और पांचवें स्थान पर वो रहे थे 8 साल बाद। पिछली बार पेरिस ओलंपिक की वजह से वो उन्होंने स्किप किया था यहाँ, तो काफी लंबे टाइम बाद वापसी कर रहे हैं और जरूर कोशिश होगी कि यहाँ पर अपना प्रदर्शन की जो छाप छोड़ना चाहे जैसे कि वो हर टूर्नामेंट में करते हैं।
पेरिस डायमंड लीग में देखना होगा क्या नीरज चोपड़ा जूलियन वेबर से बदला ले पाएंगे या नहीं। संस्कृति मंत्रालय 21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर में 100 पर्यटक स्थलों और 50 से अधिक सांस्कृतिक महत्व के स्थानों पर योग सत्र आयोजित करेगा। मुख्य कार्यक्रम आयुष मंत्रालय द्वारा विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। मोना जी, जो योग है लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकार जागरूकता फैला रही है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बेसिक नीड है।
बिल्कुल।
तो ये खिलाड़ियों के साथ साथ हमारे श्रोताओं के लिए भी योग कैसे लाभकारी है कुछ बताइए।
बिल्कुल, योग तो भारत की पुरातन संस्कृति का हिस्सा है और अब जब पूरी दुनिया ने इसका लोहा माना है और 21 जून को जैसे कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो खेलों में किसी भी खेल की हम बात करें तो खेलों में जो एक शारीरिक फिटनेस होती है एक मानसिक फिटनेस होती है और दोनों के लिहाज से योग और प्राणायाम को काफी प्राथमिकता दी जाती है। खासतौर पे जो ओलंपिक पदक विजेताओं से अगर हम बात करें तो उनकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा है, चाहे वो प्रतिस्पर्धा में हो चाहे नहीं हो, वो योग उनकी जीवन शैली का हिस्सा है क्योंकि आपको एक जिस ठहराव की जरूरत होती है जिस मेंटल पीस की जरूरत होती है क्योंकि काफी दबाव का सामना करना पड़ता है, ऐसे में योग काफी काम आता है।
इस कड़ी में लगातार देश विदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जन आंदोलन के साथ ऐतिहासिक बनाने के लिए ग्राम पंचायतें पूरी तरह तैयार है। इसी के चलते स्कूलों, आंगनवाड़ियों, पंचायत भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष योग सत्र, सामुदायिक आउटरीच गतिविधियां और सामान्य योग प्रोटोकॉल प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। पुदुचेरी 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए कई कार्यक्रमों की श्रृंखला के साथ तैयार हो रहा है जिसमें स्वास्थ्य और एकता के विषयों का उल्लेख किया जाएगा। योग संगम सिग्नेचर इवेंट के हिस्से के रूप में सिद्ध क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान ने पुदुचेरी में 4 प्रमुख उपग्रह कार्यक्रमों के आयोजन की सुविधा प्रदान की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऐतिहासिक समारोह में श्रृंखला में आज 117 आयुर्वेद संस्थानों में योग प्रदर्शन हुए। भारतीय उच्चायोग की सांस्कृतिक शाखा स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र द्वारा श्रीलंका के आयुर्वेद विभाग के संयुक्त आयोजन में 113 आयुर्वेद अस्पतालों और 4 विश्वविद्यालयों ने एक साथ भाग लिया। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
हॉकी इंडिया मास्टर्स कप में पुरुषों के पूल सी मुकाबलों में महाराष्ट्र ने मणिपुर के खिलाफ 7-1 से जीत दर्ज की। इससे पहले हॉकी इंडिया मास्टर्स कप में महिलाओं के पूल बी के मुकाबलों में आज हरियाणा ने तमिलनाडु को 8-4 से मात दी। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप अगर हम इसकी बात करें तो देश में चल रहा है, कई राज्य प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, वहीं इससे इतर अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारतीय महिला टीम अच्छा नहीं कर रही है।
जी बिल्कुल, पेनल्टी शूटआउट में पराजय का सामना करना पड़ा भारतीय टीम को, लेकिन अभी उम्मीद हम यही करते हैं कि जिन जिन गलतियों पर खासतौर पे आखिरी क्षणों में जो गोल गंवाने की गलती है उनसे उबरना होगा और निश्चित तौर पर एक अनुभवी कोच टीम के साथ हैं और उनका जो फोकस है बार बार वो ये कहते हैं कि वो अभी परिणामों पर नहीं प्रक्रिया पर फोकस कर रहे हैं कोच हरेंद्र सिंह, तो हम उम्मीद ये करते हैं कि इन जो नाकामियों से पार पाते हुए जहां मैटर करता होगा वहां टीम अच्छा प्रदर्शन
करे। चुनौती टीम के पास ये है कि वो जो कॉर्नर पॉइंट्स है ना वो नहीं ले पा रही है।
बिल्कुल, पेनल्टी कॉर्नर आप पुरुष टीम को देखें तो पेनल्टी कॉर्नर पर गोल नहीं हो पा रहे उतना, कन्वर्जन रेट बहुत खराब रहा है और महिला टीम को देखें तो पेनल्टी कॉर्नर अभी अर्जित नहीं हो पा रहे हैं उतने ज्यादा, लेकिन आप ये भी देखिए कि बाहर खेलते समय और भारत में खेलते समय काफी फर्क हो जाता है और यहां पर इन्हीं टेक्निकल चीजों से भारतीय टीम को पार पाना होगा क्योंकि आगे बहुत ही ज्यादा व्यस्त कार्यक्रम है।
और श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का, कल इसी समय फिर से मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। मोना जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम खेल खबरों पर हमसे बात की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
शुक्रिया।
और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।